पाठ 19 मृत्यु अनंत काल तक का दुखमय जीवन नहीं। शैतान ने आदनबारी में ठगना शुरू किया। उसने हव्वा को कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, आत्मा प्राण का अमृत तुका। प्रथम पाठ यही शैतान ने पढ़ाना शुरू किया। ठगने का यह काम उसी समय से शुरू हुआ और आज तक है, और जब तक ईश्वर की संतानें ईश्वर की ओर नहीं फिर जाती हैं तब तक जारी रहेगा। मुझे आदम और हव्वा को दिखाया गया। उन्होंने वर्जित पेड़ का फल खाया और उस पेड़ के चारों ओर चमकती हुई तलवार से रक्षा की जाती थी, जिससे जीवन के पेड़ के फलों को खाकर आदम हव्वा पापी के रूप में अमर न हो जाएं। जीवन का पेड़ का फल तो अमृत दिलाने वाला था। मैंने स्वर्गदूत को यह पूछते सुना कि आदम हव्वा के वंश का किस आदमी ने इस फल को खाया है। तब एक दूसरा स्वर्गदूत को यह जवाब देते सुना कि किसी ने भी नहीं खाया है। जब किसी ने नहीं खाया है तो अमर होने का सवाल ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति पाप कर मर जाता है वह सदा के लिए मरा रहेगा, वह तो अनंत मृत्यु कहलाएगी। जी उठने का कोई मौका नहीं होगा। इस तरह से ईश्वर अपना क्रोध को ठंडा करेगा। यह अचंभा का विषय है कि शैतान ने लोगों को ईश्वर के वचनों में से इस प्रकार का विश्वास दिलाने में सफलता पाई। वचन में कहता है कि जो मनुष्य पाप करेगा वह मर जाएगा, यहेशकेल 18 आयत 4। उसे शैतान ने उल्टा करके कहा कि जो व्यक्ति पाप करेगा पर अनंत काल तक कष्टमय जीवन जीता रहेगा। स्वर्गदूत ने कहा, जीवन तो जीवन ही है, चाहे वह सुख में हो या दुख में हो, पर मृत्यु में न दुख है न सुख है और न ईश्वर्या है। शैतान ने अपने दूतों को बताया कि शुरू में आदम और हवा को जो झूठ का पाठ पढ़ाया गया था उसको दोहराओ और बोलो कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। जैसे ही लोगों ने झूठी बात पर विश्वास कर ली कि मनुष्य अमर है, तो शैतान ने इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि पापी अनंत काल तक दुख भोगता रहेगा। शैतान ने अपने दूतों के द्वारा लोगों के बीच में प्रचार करवाया कि ईश्वर एक कठोर और निरंकुश व्यक्ति के समान है। वह पापियों का बदला लेने के लिए और अपना गुस्सा को शांत करने के लिए उन्हें नरक का अनंत आग में डालेगा, जहां उन्हें दिन रात रोना कलपना पड़ेगा। वह ऊपर से झांक कर देखेगा कि वे किस तरह से नरक की पीड़ा सह रहे हैं। इसे देखकर ईश्वर का भड़का हुआ क्रोध ठंडा होगा। शैतान को मालूम है कि यदि यह बुरी भावना लोगों के मन में घुसा दिया जाए तो वे ईश्वर से डरकर उसको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, न कि उसकी महिमा करेंगे। इसके बाद बहुत से लोगों को यह विश्वास भी होगा कि ईश्वर का यह डरावना वचन कभी पूर्ण नहीं होगा। जिन लोगों को उसने रचा है उन्हें ही जब वह अनंत नरक की पीड़ा में डालेगा तो यह उसके दयालु और सहनशील चरित्र को उल्टा होगा। शैतान ने लोगों को ईश्वर का चरित्र का एक और विपरीत बात बताई और कहा कि वह ईश्वर अन्यायी है। यही ईश्वर ने कहा है कि पापी और संत सबको अपने राज्य में रखेगा, क्योंकि चाहे दयालु और क्षमा देने वाला ईश्वर है। शैतान ने लोगों को बताया कि पापी अनंत काल तक नरक में दुख झेलता रहेगा, वह नहीं मरेगा। ईश्वर अपने को दयालु और क्षमाशील बोलने पर भी पापियों को नरक की सजा देगा। इसके बाद शैतान ने लोगों को बताया कि बाइबिल ईश्वर का प्रेरणा वाली किताब नहीं है। लोगों के मन में शैतान ने भ्रम डाला कि बाइबिल अच्छी बातों को सिखाने के बावजूद भी उससे प्रेम नहीं करना और उस पर निर्भर मत करना, क्योंकि इसमें अनंत दुख भोगने का सिद्धांत है। शैतान फिर एक वर्ग के लोगों को धोखा देकर कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बाइबिल का ईश्वर का चरित्र में कोई स्थिरता नहीं है। यदि कुछ मानव परिवार को वह ईश्वर सदा काल तक नरक की पीड़ा में डालेगा तो लोग बाइबिल का लेखक और इस किताब को इनकार कर मृत्यु को अनंत निद्रा समझेंगे। इसके बाद और कुछ लोगों को जो डरपोक हैं और पाप करने से भी डरते हैं, उन्हें कहता है कि पाप की मंजूरी मृत्यु नहीं है, पर नरक में अनंत काल तक दुख कष्ट भोगना है। शैतान इस मौका का फायदा उठाकर उन्हें नरक में अनंत काल तक दुख भोगने की डरावनी बातें कर उनके कमजोर मन को वश में कर लेता है। शैतान और उसके दूत उन्हें नास्तिक बनाने में सफल होकर खुशी मनाते हैं, ईसाइयों के प्रति घृणा उत्पन्न कराते हैं। इन बुरे नतीजों को वे बाइबल के विरोधियों के मन में डाल देते हैं, जिससे वे बाइबल और उसका लेखक पर विश्वास नहीं करते।
मैंने देखा कि शैतान के इस साहसी कामों को देखकर स्वर्गदूत क्रोधित हुए। मैंने पूछा कि क्यों मनुष्यों के मनों में इस प्रकार के भ्रम डाले जा रहे हैं, जबकि स्वर्गदूत तो शैतान से भी अधिक शक्तिशाली हैं और जब उन्हें आज्ञा दी जाए तो उसका काम को मिट्टी में मिला सकते हैं। तब मैंने देखा कि ईश्वर भी जानता है कि लोगों को बहकाने के लिए शैतान अपनी सारी युक्तियों का प्रयोग करेगा। ईश्वर भी उनको पाप में नहीं गिरने देने के लिए अपना वचन को उनके हृदयों में लिखेगा या बाइबल तैयार करेगा। जब ईश्वर ने उनको लिखित वचन दे दिया तो वो उसे भी सुरक्षित रखेगा, ताकि शैतान और उसके दूत किसी रीति से इसे नष्ट ना कर सकें। जब दूसरी किताबों को नष्ट की जा सकेगी, परंतु ये अनंत काल तक रहेगी। जब अंत के समय में शैतान का भरमाना या धोखा देना अधिक जोर पकड़ेगा, उस समय में इसकी और अधिक वृद्धि की जाएगी, ताकि जो बाइबल चाहे उन सबको मिले और शैतान का धोखाबाज और भ्रम से अपने को बचा सकें। मैंने देखा कि ईश्वर ने विशेषकर बाइबल की रक्षा की है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसके शब्दों में सरल बनाने के मतलब से हेर फेर किया है। ऐसा करने से जो सरलता थी वो और बिगड़ गई, क्योंकि उन लोगों की परंपरा की रीति दस्तुर की ओर मोड़ दिया गया। फिर भी मैंने देखा कि पवित्र शास्त्र में अचूकता है। एक जगह का रहस्यमय को दूसरी जगह साफ साफ वर्णन में पाते हैं। इसका सच्चा खोजी गलती नहीं कर सकता है। जीवन का रास्ता बताने में ईश्वर का वचन सीधा और सरल है। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा भी समझने में और इस वचन के अनुसार जीवन यापन करने में अगुवाई करता है। मैंने देखा कि ईश्वर के दूत किसी के मन को वश में करने का काम नहीं करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन और मरण रख दिए हैं, उसको चुनना है, क्योंकि उन्होंने जीवन का रास्ता नहीं चुना है। मैंने ईश्वर की दया और सहानुभूति को उस वक्त देखा जब उसने अपना पुत्र को मनुष्य का पाप को छुड़ाने के लिए भेजा। जिस उद्धार को बहुत दाम देकर खरीदा गया है, उसे जो ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। जिन प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है, जब वे उसके राज्य के विरुद्ध उठेंगे तो सजा मिलेगी, पर पश्चाताप कर ईश्वर की ओर फिरेंगे तो उन्हें नरक की पीड़ा झेलनी नहीं होगी। पापी की दशा में वो उन्हें स्वर्ग लेकर पवित्र लोगों के साथ भ्रष्टाचारियों की संगति में नहीं रखेगा। ऐसा करने से स्वर्ग का शुद्ध वातावरण दूषित हो जाएगा। ईश्वर न उन्हें स्वर्ग लेगा और न युग युग तक सजा देता रहेगा। वो उन्हें संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा, मानो वे यहां थे ही नहीं। इससे उसका न्याय सिद्ध होगा। उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था। अनाज्ञाकारी और पवित्र लोग आग में जलकर भस्म हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। मैंने देखा कि ईश्वर की उदारता और सहानुभूति को देखकर बहुत लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। जब सब दुष्ट लोग पृथ्वी से मिटा दिए जाएंगे, तब स्वर्ग दूतगण कहने लगेंगे, आमीन। शैतान उन क्रिश्चियनों को देखकर हर्षित होगा जो उसके भ्रम में पड़कर उसके साथ चल रहे हैं। वो और नया भ्रम पैदा करेगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी और अधिक चालाकी से ठगने की कोशिश करेगा। पोप और पादरी लोग जो उसके प्रतिनिधि हैं, उनको ऊपर उठाकर जो ईश्वर को प्रेम करते हैं और उसकी युक्ति के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें सताने के लिए भड़काएगा। ख्रीष्ट के चेलों को मार डालने के लिए शैतान अपने एजेंटों को उकसाएगा। क्या यही दुखदायी परिस्थिति होगी जब ईश्वर के बहुमूल्य जनों को ऐसा दुख सहना होगा? स्वर्गदूतगण इस सब विश्वासियों का विश्वास योग्य रिकॉर्ड रखेंगे। शैतान और उसके बुरे दूत खुश थे। उन्होंने संतों की सेवा करने वाले दूतों को कहा कि सब क्रिश्चियनों को नाश कर देंगे, जगत में कोई भी क्रिश्चियन नहीं रहेगा। मैंने देखा कि उस समय ईश्वर का कलीसिया शुद्ध होगा। उस वक्त ईश्वर की मंडली में कोई दुष्ट नहीं रहेगा। जो सच्चा क्रिश्चियन होगा, उसे अपनी पक्का विश्वास के कारण खतरा मोल लेना पड़ेगा। सब प्रकार की ताड़नाओं को, जैसा आग में जलना, तलवार से बध होना और जितने प्रकार से शैतान मार डालना चाहेगा, उन्हें वो मनुष्यों के मन में डालेगा। आधारित वचन, उत्पत्ति 3, यशाया 47 आयत 13-14, यूहन्ना 17 आयत 17, यूहन्ना 3 आयत 16, सभोपदेशक 9 आयत 5, 12 आयत 7।